نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. قل الله، کہہ دیجئے اللہ کے لیے، کیا الشفاعۃ جميع، سفارش ساری کی ساری یعنی اللہ کے اذن سے ہوگی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شفاعت اللہ کے ہاتھ میں کلی طور پر، کسی کو وہ چاہے گا تو شفاعت کی اجازت دے گا، ورنہ کوئی اس کے سامنے چوں تک نہیں کر سکتا، آواز نہیں نکال سکتا. اور نمبر ٹو، دو چیزیں ہیں نا اس میں، ایک تو یہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جس کو وہ اجازت دے گا، نمبر ٹو جس کے لیے وہ اجازت دے گا صرف اس کی سفارش کی جا سکے گی، یہ بھی اسی کے ہاتھ میں. دنیا میں سوچیں، اگر کہیں کسی جگہ نوکریاں کھلتی ہیں مثلا، اکثر اس کے لیے سفارشیں کرائی جاتی ہیں نا، تو مثلا ہے کہ وہ ایم اے پاس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ماسٹرز ہونا چاہیے جس کے لیے یہ جاب ہے. اب آپ سوچتے ہیں کہ اس کی سفارش کر دی جائے، جس کی آپ سفارش کرنے جا رہے ہیں وہ میٹرک بھی نہیں پاس، کریں گے کیا اس کی سفارش؟ آپ کہیں گے تو بالکل ہی لاجیکل بات ہے، کہاں ایم اے کی ان کو ریکوائرمنٹ ہے اور کہاں یہ میٹرک بھی نہیں پاس ہے، تو میں کیسے کروں؟ یہ بھی تو ایک شرمندگی ہوگی، میں کس منہ سے جا کے سفارش کروں؟ تو آپ کیا سوچتے ہیں، قیامت کے دن وہ لوگ جو کہ کفر میں ہوں گے، شرک میں ہوں گے، یا ایسی کچھ گناہوں کے اندر ہوں گے جو اللہ نے نہیں معاف کرنے ہیں، کوئی ایسی بات ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرنے والا، ان کو جہنم میں جانا ہے، تو ان کے لیے کون جرت کر سکے گا کہ وہ اللہ کے آگے بولے؟ جبکہ اس دن پیغمبر بھی کانپ رہے ہوں گے کہ آج اللہ بہت غضب میں ہے. ہم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ فیصلہ شروع کر دے. لوگ جب ان کے پاس جائیں گے، وہ طویل حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہوئی ہے کہ لوگ جا کے پیغمبروں سے سفارشیں کرنے کے لیے درخواست کریں گے کہ آپ سفارش کریے کہ ہمارے فیصلہ شروع کیا جائے، ہم تھک گئے ہیں، ہم انتظار میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ سے آپ سفارش کیجئے. وہ جس کے پاس بھی جائیں گے، چاہے آدم علیہ السلام ہو پہلے انسان جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، یا ابراہیم خلیل اللہ ہو، یا موسیٰ کلیم اللہ ہو، یا عیسیٰ علیہ السلام ہو، کوئی بھی اس دن اس بات پر بھی تیار نہیں ہوگا کہ اللہ کے سامنے وہ یہ کہہ دے کہ یا اللہ فیصلہ شروع کیا جائے. سفارش تو لوگوں کی، ایسے لوگوں کی، خراب لوگوں کی، مجرموں کی کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے اندر اتنی بھی جرات نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہہ سکے. وہ تو اپنی اپنی ان کو بھی پڑ گئی ہوگی کہ ہمارا یہ میری چھوٹی سی، اب ہم اس کو اپنے ہمارے اس کے اندر ڈکشنری میں تو وہ گناہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی اتنی سی چھوٹی سی خطا کو بھی ایسا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہم سے ہو گیا دنیا میں، ہم آج کچھ نہیں بول سکتے اللہ کے آگے، اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہے اس وقت. تو سوچیں، کیا کوئی سوچ سکتا ہے؟ اگر پیغمبروں کی جرات نہیں ہے تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی اٹھ کے کسی کا بھی کہہ دے، اجی فلانے میرے بڑے در پہ آتے تھے، فلانے میرے پاس بڑی چادریں چڑھاتے تھے، فلاں میرے پاس میرے نام کی نظر و نیازیں کرتے تھے، میرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، تو اللہ ان کی سفارش قبول، ان کے لیے میری سفارش قبول کر لے کہ ان کو تو بخش دے، ایسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو سفارش اسی کے لیے کوئی کرے گا جس سے اللہ خوش ہو اور جس کے لیے اللہ دل میں ڈالے. ویسے تو آپ کو پتا ہے پیغمبر بھی شفاعت کریں گے، وہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا. جب اللہ تعالیٰ جس موقع پہ جا کے اجازت دیں گے کہ اب کریں، تب وہ کریں گے. فرشتے بھی سفارش کریں گے، لیکن وہ بھی جس وقت کے اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا. اسی طرح مومن بھی سفارش کریں گے. یہ میں مسلم کی حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گی، اور इससे आपको पता चलेगा कि हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि शायद शिफात सिर्फ मैदाने हशर के अंदर ही है और उसके बाद तो कोई सिफारिश का कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके बाद भी होगी। इसीलिए तो मैं आपको कह रही, जिस वक्त भी अल्लाह चाहेगा तब होगी। लोग अपनी अपनी मर्जियों से नहीं करना शुरू कर देंगे कि हमारी मर्जी, अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खुद, मेरी खलासी हुई नहीं हुई तो मैं दूसरों की सिफारिशें शुरू कर दूं। वहां पे तो उस दिन बड़े बड़े लोग भी किस तरह से कांप रहे होंगे, कौन किसी की सिफारिश करेगा जब नफसी नफसी का आलम होगा, उस वक्त नहीं करेगा, बाद में वल्लाहु आलम किस वक्त किसको इजाजत मिलती है, कब जाके किसके दिल में अल्लाह ताला डालते हैं और किसके लिए डालते हैं। तो कुछ बातें आपको इस हदीस से वाजे हो जाएंगी। हदीस है मुस्लिम की कि कुछ मोमिन, ये तवील हदीस है, मैं आपको एक हिस्सा बता रही हूँ, कुछ मोमिन जब जन्नत में चले जाएंगे, अब देखें क्या हो गया, जन्नत में जा चुके हैं, ठीक है, अब पता नहीं वल्लाहु आलम कितना अरसा गुजरा है जन्नत में उनको पहुंचे हुए, 100 साल, 200 साल, 300 साल, पता नहीं कब, जब भी, तो बाज वो जो जहन्नुम में गए होंगे उनके बारे में अल्लाह ताला से बातचीत करेंगे। वो कहेंगे कि उनके बारे में, जो जहन्नुम में कुछ लोग चले गए हैं, तो उनके बारे में कहेंगे, रब्बाना, ए हमारे रब, ए हमारे रब, जहन्नुम में कुछ ऐसे लोग चले गए हैं जो हमारे साथ रोजे रखते थे, हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, हमारे साथ हज करे थे उन्होंने। अस्तग़फिरुल्लाह। तो जो लोग समझते हैं ना कि बस मुसलमान होना ही, कलमा पढ़ना ही काफी है और फिर सीधे सीधे हमने जन्नत में चले जाना है, ये देख लें, ये मुस्लिम की हदीस है कि वो रोजे भी रखते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, हज भी उन्होंने किए हुए थे, वो जहन्नुम में पड़े हुए। तो वो कहेंगे, या अल्लाह, जहन्नुम में हम ये ऐसे लोग चले गए हैं जो हमारे साथ इसी तरह करते थे। तो उनसे कहा जाएगा, ऐसे जिन लोगों को भी तुम पहचानते हो उनको निकाल लाओ, जहन्नुम में लोगों की सूरतें तब्दील नहीं होंगी, याद रखिए, चाहे चल जल के कोयला हो जाए लेकिन उनकी शक्लें पहचानी जाएंगी, तो ऐसे लोगों को ये पहचान लेंगे। और जो भी इनके दुनिया में साथी थे या जिनको वो जानते थे, वो उनको निकाल लाएंगे, बहुत सारे लोगों को निकाल लाएंगे। इसी वजह से देखें, कहा जाता है ना कि दुनिया में नेक दोस्त बनाए, नेक साथी बनाए, नेक लोगों के साथ अपना उठना बैठना रखें, क्योंकि ये फायदा होगा उस दिन कि अगर कोई जहन्नुम में चला भी जाए तो जन्नती लोग उसकी सिफारिश करेंगे। कब जाके करेंगे ये नहीं अब कुछ बताया गया यहाँ पे, लेकिन ये कंफर्म है कि करेंगे, ठीक है। तो उनकी सिफारिश का फायदा भी होगा, अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे उनकी सिफारिश। इसीलिए वो वाली बात जो आती है ना कि हजरत हसन बसरी ने फरमाया अपने शागिर्दों से कि अगर तुम मुझे जन्नत में ना पाओ तो मेरे बारे में सवाल कर लेना, वो यही इसी हदीस से है ना बात, इब्ने कय्यिम ने फरमाया था कि अपने शागिर्दों से कि अगर तुम मुझे जन्नत में ना पाओ तो अल्लाह ताला से तुम कहना कि अल्लाह, एक बंदा हुआ करता था जो हमें तेरी याद दिलाता था, एक बंदा होता था जो हमें तेरी याद दिलाया करता था, और ये फरमा के रोने लगे। तो इससे पता चलता है कि लोग जो जन्नत के अंदर होंगे वो सिफारिशें करेंगे और वो सिफारिश करके उनको निकलवाने में कामयाब होंगे। तो बहुत से ऐसे लोगों को वो जहन्नुम से निकाल लाएंगे जिनमें से कुछ को आग निस्फ पिंडली तक जला चुकी होगी और कुछ को घुटनों तक। फिर वो कहेंगे, ए अल्लाह, आपने जो हमें हुक्म दिया था तो हम जिनको जानते थे उनको निकाल लाए। अल्लाह ताला फरमाएगा, अब जाओ, जिनके दिल में दीनार के बराबर भी खैर हो उसको भी जहन्नुम से निकाल लाओ। अब जिनको वो जानते नहीं होंगे मगर उनके दिल में खैर होगी, जिनका अल्लाह का इज़न होगा, उनको भी वो निकाल लाएंगे। फिर कहेंगे, या अल्लाह, आपने हमें जिनके बारे में खबर दी थी हमने उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको निकाल लाए, बहुत सारी खलकत को निकाल लाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, जाओ दोबारा जाओ, जिसके दिल में आधे दीनार के बराबर भी खैर है ना उसको भी निकाल लो। फिर वो बहुत सारी मखलूक को और को निकाल लाएंगे, बहुत सारे लोगों को। फिर कहेंगे, या रब जिनके बारे में आपने हमें हुक्म दिया था उनमें से तो कोई भी नहीं हमने छोड़ा, उन सबको निकालना है। अल्लाह ताला फरमाएगा, जिसके दिल में जर्रे के बराबर भी खैर हो उसको भी निकाल लो। वो निकाल लेंगे और बहुत सारे लोगों को निकाल लाएंगे। फिर वो कहेंगे, या अल्लाह अभी तो एक खैर वाला बंदा भी नहीं रहा, सबको हम निकाल लाए जी। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि फरिश्तों ने भी सिफारिश कर ली, नबियों ने भी कर ली, मोमिनों ने भी कर ली, अब तो अरहम और राहिमीन ही बाकी रह गया, यानी अल्लाह ताला खुद ही बाकी रह गया। फिर अल्लाह ताला एक मुट्ठी भरेगा आग से और ऐसे लोगों को भी निकालेगा जिन्होंने कोई खैर भी नहीं की होगी। वो वल्लाहु आलम उनके अंदर क्या चीज होगी कि अल्लाह ताला उनको निकालेगा, यानी उनके अंदर हो सकता है कि ईमान हो लेकिन उन्होंने कोई भी नहीं नेकी कभी की हुई, वल्लाहु आलम। और जन्नत के दरवाजों के पास एक नहर होगी जहां उनको डाला जाएगा, वो नहरे हयात कहलाती है, उसमें उनको डाला जाएगा। वो जल के कोयला हो चुके होंगे, यानी बिल्कुल जल चुके होंगे। अब वो जब इस नहर के अंदर जाएंगे साफ हो जाएंगे, और फिर उसके बाद इनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। फिर ये लोग जन्नत में उतकाउल्लाह कहलाएंगे, अल्लाह के आजाद करदा। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे, ये तो कुछ ईमान वाले होंगे जिनको निकाल लिया जाएगा। अल्लाह ताला अरहमर राहिमीन अपनी मुट्ठी भरेगा ना आग में से, और वो उसमें कितने लोग होंगे सोच सकते हैं आप, वो सब फिर जन्नत में दाखिल होंगे। लेकिन ये कब होगा इसकी तफसीलात अल्लाह ही बेहतर जानता है। कब जाके जन्नतियों के दिल में ये ख्याल आएगा कि वो हमारे साथी कहाँ हैं जो हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे और ये करते थे, ये कब होगा वल्लाहु आलम। कितनी देर तक वो जहन्नुम में जलते रहेंगे वल्लाहु आलम। नबी नबी अंबिया भी जिनकी सिफारिश कराएंगे सिफारिश करेंगे, बाज की शिफात उस वक्त होगी जबकि लोग जन्नत में जा चुके होंगे, तो तब शिफात अंबिया कराएंगे और वो निकलेंगे वहां से। तो इस चीज के ऊपर भरोसा करके बस बैठ जाना तो कोई तो हमारी सिफारिश कर ही लेगा, हम एक दिन तो निकल ही जाएंगे, इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। बल्कि वो अमल करने चाहिए कि कभी जहन्नम में जाना क्या उसको देखना भी ना पड़े, इस चीज की दुआ करनी चाहिए। ना डर हो के ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ कोई बात नहीं है, ऐसा तो अगर हो भी जाए तो कोई मसला नहीं। अल्लाह रहम फरमाए। लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, लिए उसी के है बादशाहत आसमानों की और जमीन की। जब बादशाहत उसी की है, वो जिसको चाहे इजाजत दे, जिसको चाहे ना दे, जिसको चाहे जिस वक्त भी निकाले। तुम इलैहि तुरजाऊन, तुम उसी की तरफ पलट के जाने वाले हो, तुम पलटाए जाओगे उसकी तरफ। ये याद रखना, हमेशा यहां नहीं रहना है। कुरान कितनी मर्तबा हमें याद दिलाता है, कितनी दफा याद दिलाता है कि वापस जाना है, वापसी है, लौटना है। लेकिन यही एक बात है जो सबसे ज्यादा जल्दी हमारे जहन से महव हो जाती है। सुबहानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने आयात की।